तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद् भगवद् गीता के आत्म संयम योग नामक छठे अध्याय के 37 से 45 श्लोक पर्यंत भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है योग भ्रष्ट के विषय में, उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो अर्जुन के योग भ्रष्ट की गति के विषय में पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने 41 और 42 इन दो श्लोकों के द्वारा योग भ्रष्ट के दो प्रकार करके उत्तर दिया। योग मार्ग में प्रवृत्त सर्वकर्म सन्यासी वेदांत का श्रवणादि साधन करते हुए अल्पायु के कारण जो म्रियमाण योग भ्रष्ट है, उसमें यदि कोई पूर्व जन्म के द्वारा उपचित यदि भोग वासना का प्रादुर्भाव होने पर मन विषयों में आकृष्ट हो गया और शरीर छूट गया, आगे की साधना नहीं हो पाई। और दूसरा है वैराग्य की भावना अति दृढ़ होने के कारण विषयों में जिसकी स्पृहा नहीं है, अल्पायु के कारण जिसका शरीर छूट गया, ये दोनों के बारे में भगवान ने कहा कि उसमें एक जिसको भोग वासना का प्रादुर्भाव होने पर विषयों में स्पृहा हो गई और शरीर छूट गया, तो उसके लिए तो भगवान ने कहा कि वो पुण्य कार्य के लोक को प्राप्त करेगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा और वहां ब्रह्मा जी के संवत्सरों तक वो ब्रह्मलोकस्थ भोग का भोग करेगा, क्योंकि भोग वासना की प्रबलता थी। अतः वो भोग भोगने के अनंतर शुचिनाम श्रीमताम गेहे अभी जाए थे, ये कहा। श्रीमान और जो पवित्र कार्य है ऐसे महाराज चक्रवर्ती के घर में उसका जन्म होगा, कहा। ब्रह्मलोक में जाकर के फिर पुनः मनुष्य शरीर धारण करेगा। और जो दूसरा है जिसकी वैराग्य की भावना दृढ़ थी, भोग में कोई रुचि नहीं थी, मात्र अल्पायु के कारण साधना पूरी जिसकी नहीं हुई और शरीर छूट गया, तो उसके लिए भगवान ने पक्षांतर करते हुए कहा कि वो तो जो है पुण्य कार्य के लोक को प्राप्त नहीं करेगा, किंतु यहां ही उनका दूसरा जन्म धीमान योगी के घर में होगा। योगी नाम एव कुले भवति, और उस योगी का विशेषण बताया धीमताम योगी नाम एव कुले भवति, और उसके साथ भी शुचि विशेषण लगाने के लिए पिछले श्लोक से शुचि नाम धीमताम योगी नाम कुले भवति उसका जन्म होगा। तो दो प्रकार भगवान ने योग भ्रष्ट के किए, एक तो विषयों में जिसकी स्पृहा हो गई वो, और अति वैराग्यवान, दोनों की गति भगवान ने बताई। और दोनों को पुनः मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है ये बताया। एक को ब्रह्मलोक में भोगने के बाद फिर वो यहां महाराज चक्रवर्ती के घर में जन्म, और वैराग्य की भावना जिसकी प्रबल है वो लोक को प्राप्त किए बिना योगी के घर में, धीमताम योगी के घर में उसका जन्म भगवान ने बताया, जिसका विचार हम लोग कल कर चुके। और फिर भगवान ने ये भी कहा कि ईदृशम जन्म लोके दुर्लभतरम, एक दुर्लभ और एक दुर्लभतरम, महाराज चक्रवर्ती के घर में जन्म दुर्लभ है, और इससे भी बढ़कर जो ब्रह्म विद्यादि से संपन्न, जो बुद्धिमान अकिंचन जो योगी है, उसके घर में जो जन्म है वो पूर्व से भी दुर्लभ है। अभी दोनों प्रकार का जन्म जो है दुर्लभ क्यों है, इसका कारण भगवान अगले 43वें श्लोक में बता रहे हैं, उसका उच्चारण हम लोग करते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। देखिए भगवान ने इसमें दुर्लभता का कारण बताया कि वो दोनों प्रकार के जन्म, श्रीमान के घर में जन्म और धीमान के घर में जन्म, धनवान के घर में जन्म और विद्यावान के घर में जन्म। कल जो है विद्या और धन दोनों का जो भेद है उसका हम लोग ने विचार किया। धन और विद्या दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो विद्या, किंतु धन के पीछे ज्यादा पड़े रहते हैं, और विद्या का विनियोग भी धन में ही करते हुए देखते हैं आजकल। आजकल की विद्या जो ऐसी है। अब देखो भगवान ने इसमें कहा कि तत्र पौर्वदेहिकम बुद्धिया संयोगम लभते। पौर्वदेहिक जो बुद्धि का संयोग है वो योग भ्रष्ट को प्राप्त होता है। यानी महाराजा चक्रवर्ती के घर में जिस योग भ्रष्ट का जन्म हुआ है, और धीमान के घर में, योगी के घर में जिसका जन्म हुआ है, उन दोनों को पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते। तत्र तत्र यानी इन दोनों प्रकार के जन्म में पौर्वदेहिक बुद्धि संयोगम। देखो पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग यानी कि पूर्व जन्म में उन्होंने जहां तक साधना की थी वो जो है बुद्धि का संयोग उसको प्राप्त होगा। पौर्वदेहिक का अर्थ होता है पूर्व देहे भवम पौर्वदेहिकम, पूर्व देह में यानी पूर्व जन्म में उन्होंने जहां तक जो साधना संपादित की थी वो बुद्धि संयोग, यानी सर्वकर्म का संन्यास उन्होंने किया था, गुरु उपसदन भी किया था, वेदांत का श्रवण मनन भी किया था, और निधिध्यासन करते समय अल्पायु के कारण शरीर छूट गया था। तो एक का उस समय जो है विषयों में स्पृहा हो गई और शरीर छूट गया, और दूसरे की वैराग्य की भावना प्रबल होते हुए भी अल्पायु के कारण शरीर छूट गया था। अब उन्होंने, उन दोनों ने पुनः मनुष्य शरीर धारण कर लिया है। तो पूर्व देहे भवम, पूर्व देह में जो भी उन्होंने साधना की थी, जहां तक का उन्होंने अनुष्ठान किया था, तब तक का जो है वो बुद्धि, यानी ब्रह्मात्मिक विषयीय जो बुद्धि थी उनकी, उन्होंने जो साधना की थी वो किस लिए की थी? ब्रह्मात्मिक बोध के लिए साधना की थी कि नहीं? तो वो जहां तक उसकी ब्रह्मात्मिक विषयीणी जो साधना जहां तक हुई थी, उस बुद्धिया संयोगम, उस बुद्धि के संयोग, संयोग का अर्थ है यहां पर साधन, उस बुद्धि के बाद अगला जो साधन है वो लभते, यानी वो प्राप्त कर लेगा, साधन कलाप को प्राप्त कर लेगा। ये बात ऐसी है जैसे आज आपने कार्यालय में देर रात तक काम किया, थक गए, वहीं पर ऐसी सब फाइलें छोड़ कर करके सो गए। सुबह में दूसरे दिन आप जब स्वस्थ होकर के कार्यालय में जाएंगे तो फिर आपको पूर्व दिन में जो किया गया जहां तक का काम था वो वैसे ही मिलेगा कि नहीं, कि दूसरी बार करना पड़ेगा फिर वो पूरा? वैसे मिलेगा। और आज के दिन में फिर उससे जो आगे काम शेष है वो करना है। ऐसा नहीं कि रोज जो है प्रतिदिन का पिछला छोटा भी आज भी करना पड़े, ऐसा नहीं है। उसको कहते हैं पौर्व देहिक बुद्धि संयोग, ये प्राप्त होता है। इसलिए तो देखो सभी मनुष्यों की बुद्धि एक जैसी कहां है? किसी का भी एक जैसा स्वभाव नहीं, किसका एक जैसा शरीर नहीं, रूप रंग नहीं, गुण नहीं, स्वभाव एक जैसा नहीं, किसी का भी शत प्रतिशत जो मेल बैठ जाए ऐसा कोई भी उदाहरण आज तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? हमारे यहां तो सनातन धर्म में तो पूर्व और पुनर्जन्म मानते हैं, इसलिए उसका कारण बिल्कुल विद्यमान है। हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं है, किंतु जो पूर्व और पुनर्जन्म नहीं मानते हैं उनको पूछो कि यदि पूर्व और पुनर्जन्म नहीं है तो ये जो मनुष्य में जो भेद है उस भेद का कारण क्या हो सकता है, ये तो बताओ, तो वो नहीं बता पाएंगे। जन्म से ही भेद जो है दिखता है, उसका कारण क्या है, उसके पास कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, उत्तर नहीं है ये अलग बात, अलग है, किंतु उसके सामने एक जो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है उसका भी वो उत्तर नहीं दे पाते। यदि पुनर्जन्म नहीं है जो कहते हैं, तो पुनर्जन्म तो वर्तमान शरीर छूटने के बाद होगा कि नहीं? पुनर्जन्म तो वर्तमान शरीर छूटने के बाद होगा। वर्तमान जन्म को तो वो स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, बताओ? वर्तमान जन्म, और वर्तमान जन्म में वो अच्छे कर्म जो कर रहा है, अच्छे कर्म भी है बुरे कर्म भी कर रहा है, तो जो वो अच्छे कर्म कर रहा है वो सुख की अभिलाषा से कर रहा है, तो कई एक जो है कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल इस मनुष्य शरीर में भोगा नहीं जा सकता है। उसको भोगने के लिए कई एक कर्म तो ऐसे है कि एक ही कर्म का भोग करने के लिए कई एक जन्म लेने पड़ते हैं, जैसे गोहत्यादि ब्रह्महत्यादि जो पाप है उसके लिए कहा कि सात सात जन्म, एक जन्म पाप कर्म का भोग के लिए। ठीक है, जो नहीं मानते हैं उसको वो कहे कि भाई हम तो वेदादि को नहीं मानते हैं इसलिए हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे। मत करो, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो बुरे करोगे, बुरे कर्म का फल ही हो या चाहे अच्छे कर्म का फल हो, भोग के बिना उसका जो है नाश नहीं हो सकता। और कई कर्म जैसे अभी कहा कि गोहत्यादि जो पाप है उसको भोगने के लिए ये मनुष्य शरीर पर्याप्त नहीं है, मनुष्य की आयु पर्याप्त नहीं है, तो फिर उनको तो ये जो किए गए कर्म है वो कृत हानि, पुण्य कर्म या पाप कर्म उसको बिना भोगे उसके हानि मानने की आपत्ति। ठीक है, पाप कर्म तो बिना भोगे समाप्त हो जाए वो तो हम अच्छा मानेंगे, अच्छा हुआ है तो बढ़िया हुआ, किंतु यदि पुण्य कर्म किए है और पुण्य कर्म का फल प्राप्त हुए बिना वो पुण्य कर्म समाप्त हो जाए तो क्या होगा? स्वीकार कर सकते हैं आप लोग? नहीं, आप कहेंगे कि इतनी कठिनाई से हमने सत्कर्म किए हैं, इतनी कठिनाई से सुबह में 4 बजे उठकर के त्रिवेणी संगम में जाकर के स्नान किया है, इतना कष्ट सहन करके, और उसका फल न मिले, बिना फल ही वो समाप्त हो जाए तो कोई करेगा? नहीं। किंतु जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं उसकी दृष्टि से कृत की हानि की आपत्ति आए, जो वर्तमान जन्म में किए गए सत्कर्म है उसको बिना भोग नष्ट मानने की आपत्ति, क्योंकि उनकी दृष्टि से दूसरा अगला जन्म तो है नहीं, तो किए हुए कर्म का जो फल है उस फल को भोगे बिना समाप्त होने की आपत्ति। और जन्म हुआ है कि नहीं वो तो मानेंगे कि नहीं? वो जो पूर्व जन्म नहीं मानते, पुनर् की बात कह दी, अब पूर्व जन्म जो नहीं मानते, पूर्व जन्म नहीं मानते मत माने, किंतु वर्तमान जन्म तो मानेंगे कि नहीं? और उनका जन्म भी उसी प्रक्रिया से हुआ है, जो पूर्व जन्म का स्वीकार करते हैं उनका जन्म जिस प्रक्रिया से होता है उसी प्रक्रिया से होता है या उनके लिए कोई और प्रक्रिया है? एक ही प्रक्रिया। तो समझ लो कि कोई बालक है, बच्चा है, अभी जन्म धारण करते ही वो पंगु है, मूक है, या बधिर है या कोई भी कष्ट से हो, कष्ट के साथ यदि वो जन्म धारण करता है और एक बच्चा है बिल्कुल स्वस्थ होकर के जन्म धारण करता है, एक ही घर में ले लो, एक बच्चा जो है वो पंगु पैदा हुआ और दूसरा है वो स्वस्थ पैदा हुआ, तो यदि उन दोनों का पूर्व जन्म नहीं था, पूर्व में वो नहीं थे और वर्तमान उनका यदि फ्रेश जन्म हुआ ऐसा मानेंगे, तो अकृत का अभ्यग मानने की आपत्ति। एक मूक बधिर पंगु पैदा हुआ और एक स्वस्थ पैदा हुआ, तो क्या ये दोनों में ये जो भेद है क्या अकारण हो सकता है? जो पूर्व नहीं मानते उनकी दृष्टि से तो उनको अकारण ही मानना होगा ना, उनका कोई कारण वो तो नहीं बता पाएंगे, तो उनकी दृष्टि से यदि कोई दूसरा कारण है नहीं तो एक दुखी और एक सुखी कैसे उनका जन्म हुआ? सुख के साथ एक का जन्म और एक का दुख के साथ जन्म कैसे हो गए? तो फिर उनका तो बिना कारण ही मानना होगा कि नहीं? फिर तो संसार में बिना कारण कोई कार्य होता नहीं होता, इसलिए अकृत का अभ्यागम जो नहीं किया है, पाप कर्म नहीं किया है, तो उस पाप कर्म के फल भोगने की आपत्ति वो पंगु व्यक्ति को, पंगु बालक को आई। वर्तमान में तो उन्होंने कोई दुष्कर्म किया नहीं है, इसलिए अकृत का अभ्यागम मानने की आपत्ति। और जो पुनर्जन्म नहीं मानते उनके कृत का नाश की आपत्ति। कृतनाश और अकृत का अभ्यागम, ये दो प्रश्न जो है पूर्व और पुनर्जन्म नहीं मानते उसके सामने खड़े रहते हैं। और हमारे सनातन धर्म में तो ये कहा भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। हमारे सनातन धर्म में तो शरीर बदलना बहुत ही सहज है, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण करो, ठीक इसी प्रकार वृद्ध शरीर का त्याग कर दो और दूसरा बालक का शरीर धारण कर लो, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चालू रहता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक ये चलता ही रहेगा, किंतु जन्म धारण करने वाला जो जीवात्मा है उसका जन्म भी नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं। एक शरीर धारण किया प्रारब्ध कर्मानुसार, भोग से समाप्त हो गया, फिर दूसरा शरीर धारण, तीसरा, इस तरह से श्रृंखला हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल पूर्व और पुनर्जन्म माना। और मृत्यु के समय तो केवल स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर तो बदलता नहीं है। सूक्ष्म शरीर का नाश तो ज्ञान से ही संभव है, स्थूल शरीर का नाश कर्म के क्षय से होता है। स्थूल शरीर का नाश कर्म का क्षय होने पर होगा, ध्यान दीजिए, और सूक्ष्म शरीर का नाश ज्ञान से होगा। अज्ञान जो कारण शरीर हटने पर होगा, तृतीय जो अज्ञान है एक नहीं जिसको कारण शरीर कहा है, वो ज्ञान से जब कारण शरीर का नाश होगा तो कार्य रूपी जो सूक्ष्म शरीर है उसकी भी निवृत्ति
हो जाती है। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है ये श्रृंखला चालू रहती है। इसलिए भगवान ने यहां पर कहा कि अभी ये जो अर्जुन ने जिस योग भ्रष्ट के विषय में जो शंका की है उसको अभी तत्व ज्ञान तो हुआ नहीं है। तत्व ज्ञान होने से पहले ही अल्पायु के कारण शरीर छूट गया, उन्होंने जो है अगला मनुष्य शरीर धारण किया है। तो पूर्वकृत जो साधना है जहां तक उन्होंने अनुष्ठान किया था वो उसकी बुद्धि का जो संयोग हो उसको इस शरीर में भी प्राप्त हो जाएगा। वो बुद्धि जो है वो पूर्व जन्म के जो संस्कार है वो खत्म नहीं हुआ है। और एक बात प्रसंग से ये भी ध्यान में रख लीजिए कि ये तो यहां तो ये साधना की बात है, इसलिए साधन कलाप जो है वो जहां तक उन्होंने साधना की थी वो साधना उनको जो है विनष्ट हुए बिना प्राप्त होगी, किंतु जो और भी जो जो जीव जो कर्म करते हैं और जहां तक उन्होंने किया है वो भी उसको आगे उसी साधना उसी बुद्धि का संयोग प्राप्त होता ही है। सामान्य मनुष्य के लिए भी ये बात होती है। इसलिए तो देखिए जन्म के बाद तुरंत ही भेद देखने को मिल जाता है। एक साथ में एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए दो बच्चे हैं, उन दोनों में भी तो भेद जो है स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जो भी आकांक्षा इच्छा भावना तृष्णा राग द्वेष ईर्ष्या दिखाई जो भी दोष है वो सब अंतकरण में रहते हैं, स्थूल शरीर में नहीं रहते, अंतकरण में रहते हैं। और मृत्यु से अंतकरण का नाश तो होता ही नहीं, अभी जैसे बताया वो तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, बस मृत्यु से तो शरीर छूट गया बस, किंतु संस्कार जो है समाप्त नहीं होते हैं। संस्कार इतने दृढ़ और प्रबल होते हैं कि आप चाहे तब भी आप उसको मिटा नहीं सकते, ये बात है। जो मन में बैठा हुआ संस्कार है और वो जो संस्कार होता है ना वो पूर्व उपचित होता है, पूर्व उपचित प्राचीन कर्म से ही संस्कार दृढ़ बनते हैं। इसलिए कई एक व्यक्ति को आप देख सकते हैं वो उनको पता है कि मेरे संस्कार जो है खराब है, वो उसको छोड़ना चाहते प्रयत्न भी करते किंतु वो प्रयत्न जो है पर्याप्त नहीं होने के कारण वो परेशान रहते हैं, खुद से ही परेशान रहते हैं। चाहते हैं देखते हैं कि ये गलत है फिर भी उसको छोड़ नहीं पाते। दुर्योधन ने कहा जानामि अधर्म नच में निवृत्ति, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। दुर्योधन और पांडव सब एक साथ में गुरुकुल में पढ़े हैं, अध्ययन तो साथ में किया, तो धर्म और अधर्म का दुर्योधन को बोध नहीं था ये बात थोड़ी है, बोध था किंतु धर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही थी। वो खुद कहता है चाहने पर भी मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, मैं जानता हूं धर्म क्या है। केनापि देवी ने हृदय स्थित ना यथा नियुक्तो से तथा करूंगी, कोई देव है मेरे अंदर जो दृढ़ संस्कार रूप से बैठे हुए उससे प्रेरित होकर के मैं कर रहा हूं, तो उसका जो है देव यानी यही संस्कार। यदि गलत संस्कार है तो वर्तमान में भी वो गलत करेगा, और यदि शुभ संस्कार है तो वर्तमान जन्म में भी वो शुभ कर्म करेगा। इसलिए संस्कार को काटना बड़ा कठिन है। सामान्य ही एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूं। हमसे एक विद्यार्थी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे थे, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहले शिव सूत्र को कंठस्थ किया जाना होता है, 14 दो शिव सूत्र है जिसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। तो उसमें दूसरा सूत्र है रिल रिक, तब वो विद्यार्थी से ली का उच्चारण न हो सके, वो जो है सरल उच्चारण ली है, किंतु वो सरल उच्चारण न करके वो कठिन उच्चारण कर सकते हैं किंतु सरल नहीं कर सकता, वो अरली बोलते हैं। ली में क्या है, लकार की ध्वनि पहले और रेफ की ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है ली, किंतु उससे ली न बोला जाए, वो रेफ की ध्वनि को पहले बोले और लकार की ध्वनि को बाद में बोले, यानी कि अरली बोले। एक हफ्ते तक उसको अभ्यास करवाया कि तुम ली ही बोलो, रली नहीं चलेगा, वो गलत है, ली ही बोलना होगा। हफ्ते के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कह के अब मेरे से तो यही होगा, अब आप आगे पढ़ाइए क्योंकि मेरे को किसी और को तो पढ़ाना नहीं है, मैं समझ लूंगी कि हाँ ये है, बताओ। अब उसको ली की जगह वो रली बोलना कठिन है और ली वरना सरल है, किंतु वो कठिन उच्चारण करे और सरल ली जो है बिल्कुल सामान्य और इजी उच्चारण है, उसके ली का उच्चारण ना हो, ऐसा ये संस्कार इतना दृढ़ होता है, वो प्राचीन संस्कार होता है, उसको कहते हैं बुद्धि की जड़ता। तो हर चीज में ये बुद्धि का संयोग प्राप्त होता है, और ये जो यहां पर जो बात चल रही है तो उसको जो है पूर्व जन्म में उन्होंने ये जो साधना की थी उस साधन तक का जो है बुद्धि का संयोग साधन कला उसको प्राप्त होगा। और अब भगवान आगे और कहते हैं कि वो केवल उसको पूर्वकृत पौर्वदेहिक बुद्धि का संयोग उनको प्राप्त होता है, उतना ही नहीं ततः भूयः संसिद्धौ यतते च। देखो उत्तरार्ध में बताया यतते च ततो भूयः संसिद्धौ, ततः भूयः संसिद्धौ यतते, ततः यानी जो है उस लाभ के पौर्व देहिक बुद्धि के लाभ के अनंतर वो भूयः संसिद्धौ लभते, फिर ये वर्तमान जन्म में उससे आगे की वो जो साधना है वो उस शुरू करेंगे। भूय यानी अधिकम, यहां से जो छूटी थी उससे जो बाकी है वो जो है अग्रिम जो भूमि है उसको संपादन करने के लिए वो संसिद्ध हो, संसिद्ध हो यानी जो संसिद्धि मोक्ष के लिए वो पुनः प्रयत्न करेंगे जहां से छूटा था वो। यतते का अर्थ है देखो प्रयत्न करो, करेगा वो, और वो प्रयत्न कब तक करेगा, जब तक जो मोक्ष की भूमिका को प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक उसका प्रयत्न चालू रहेगा। फिर यदि बीच में अभी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ और शरीर छूट गया तो फिर वो अगला जन्म लेकर के वहां से फिर वो साधना उसकी चालू रहती है, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक। और भगवान ने यहां अर्जुन के लिए कुरुनंदन शब्द का प्रयोग किया इस श्लोक में, कुरुनंदन। तो भगवान इससे ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन तू भी कुरुनंदन हो, तुम्हारा जो जन्म है वो कुरु वंश में हुआ, महाराज चक्रवर्ती के घर में तुम्हारा जन्म हुआ, जो शुचि भी है श्रीमान भी है कुरुकुल, शुचि भी है और श्रीमान भी, ऐसे कुरुकुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम भी योग भ्रष्ट जातम, योग भ्रष्ट के कारण तुम्हारा यहां पर जन्म हुआ और पूर्व वासना के वशीभूत होकर के इस समय युद्ध की शुरुआत होने को है, बल्कि शंखनाद आदि भेरी वगैरह सब नाद हो गया, उस समय तुम्हारे मन में जो है ये पूर्व उपचित जो वासना प्रबल हुई और अनायास तुम इस समय मेरे से ये ज्ञान का लाभ प्राप्त कर रहे हो। समय कौन सा है? देखो युद्ध का, और युद्ध के समय भगवान उसको ये ब्रह्म विद्या का बोध कर रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को भी कुरुनंदन शब्द का प्रयोग करके ये सूचित किया और तुमको ज्ञान का लाभ होगा। महाप्रभाव है कुरु का, महाप्रभावी कुरु का यहां कीर्तन भगवान करने का अर्थ ये है। और ये जो भगवान का जो वचन है कि वर्तमान शरीर में वो पूर्व भूमिका को वो प्राप्त करके इस जन्म में अग्रिम भूमिका के लिए वो जो है प्रयत्न करेगा, और कब तक करेगा? संसिद्ध हो, जब तक जो है मोक्ष भूमिका प्राप्त न हो जाए तब तक। देखिए यही बात और इसी प्रकार का संवाद योग वाशिष्ठ महारामायण में भी मिलता है। योग वाशिष्ठ महारामायण में भगवान राम ने भी जैसा अर्जुन ने प्रश्न किया है वैसा ही प्रश्न किया वशिष्ठ जी के। राम जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि एकामथ द्वितीयाम वा तृतीयाम भूमिकाम उत आरूढ़स्य मृतस्याथ कीदृशी भगवन गति। और आप लोग जानते होंगे कि मोक्ष की सात भूमिका है, उसको योग भूमिका भी बोलते हैं। सात भूमिका होती है और उन सात भूमिकाओं में जो प्रथम तीन भूमिका है उसको साधन भूमिका कहते हैं, साधन बुद्ध भूमिका कहते हैं। और चतुर्थ भूमि है वो साक्षात्कार भूमि है वो, और उत्तर जो तीन भूमि है वो जो है जीवन मुक्ति की भूमिका है, जीवन मुक्त दशा की भूमिका है। अब योग भ्रष्ट की आशंका तो प्रथम तीन भूमिका में ही संभव है, इसलिए भगवान राम ने कहा एकाम अथ द्वितीयाम वा तृतीयाम भूमिकाम उत, या पहली भूमि दूसरी या तीसरी भूमिका में जो आरूढ़ है और उसमें जो है अल्पायु के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो कीदृशी भगवान गति? भगवान राम ने वशिष्ठ जी को कहा कि उसकी गति कौन सी होगी भगवान बताए। तो वशिष्ठ जी ने भी वहां उत्तर ये दिया कि योग भूमिका में जो प्रथम तीन भूमिका में जो जीवित शरीरी है वो भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूर्व दुष्कृतम, भूमिका के अनुसार उसके दुष्कृत का क्षय हो जाता है और वो आगे बढ़ता है, और उसमें यदि बीच में शरीर छूट गया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरु पवन कुंजेशु रमते रमणी सखः ततः सुकृत संभारे दुष्कृते च पुराकृते भोग क्षयात परीक्षिणे जायते योगिनो भवे। और आगे कहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे गुप्ते गुणवताम सताम जनित्वा योगमेवेते सेवन्ति योगवासिताः। जो भगवान ने उत्तर दिया न वही उत्तर वशिष्ठ जी ने भगवान राम को दिया, कहा कि प्रथम द्वितीय या तृतीय भूमिका जो साधन भूमिका है उस भूमिका में साधन अभी पूरा हुआ नहीं, अल्पायु के कारण प्रथम द्वितीय या तृतीय भूमिका में जिसका शरीर छूट गया तो वो जो है भोग की वासना के कारण वो स्वर्गादि लोक को प्राप्त होगा और वहां भोग भोगने के अनंतर फिर जो है योगी के घर में उसका जन्म, योगिनो भूवि। और उसके लक्षण बताए शुचि और श्रीमान, उसके घर में उसका जन्म होगा। और प्राग भावना अभ्यस्तम, पूर्व जन्म में उन्होंने जिस भावना का अभ्यास किया था उस योग भूमि क्रमम लभते, उस भूमिका को वो यहां प्राप्त करेगा और अगली भूमि के लिए वो प्रयत्न करेगा। तो उस समय भूमिका देखो, सबसे पहली भूमिका है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुरीयगा। इस सात भूमिका योग वशिष्ठ महारामायण में कही है। शुभेच्छा जो प्रथम भूमि है वो वेदांत शास्त्र के अनुसार, यानी भगवान श्री कृष्ण के अनुसार या उपनिषद सिद्धांत के अनुसार, यद्यपि योग वशिष्ठ का भी सिद्धांत यही है किंतु उन्होंने योग भूमिका के क्रम से नाम बताया। तो प्रथम भूमिका है जो साधन चतुष्टय संपन्न, उसको कहते हैं प्रथम भूमिका। विवेक आदि चार साधन से जो संपन्न जो महापुरुष है उसको कहते हैं प्रथम भूमिका को प्राप्त है, साधन चतुष्टय संपत्ति से जो युक्त है। अथवा ये कहे कि जो साधन चतुष्टय संपत्ति पर्यंत की जो भूमिका है उसको कहेंगे पहली भूमि। उसके बाद वो जो है गुरु उपसदन करके वेदांत वाक्य का जो विचार वगैरह कर रहे हैं, वेदांत वाक्य का श्रवण और मनन पर्यंत जो है उसको दूसरी भूमि कहते हैं, श्रवण मनन संपत्ति पर्यंत की दूसरी भूमिका है। और श्रवण मनन परिनिष्पन्न होने पर जो तत्वज्ञान नाम की जो निर्विचिकित्सक रूप जो तीसरी भूमि है, जिसको तनुमानसा और निदिध्यासन पर्यंत, श्रवण मनन के बाद जो निदिध्यासन है उस निदिध्यासन कोटि को तृतीय भूमि कहते हैं, तनुमानसा, जिसमें मन जो है सूक्ष्म हो जाता है। और चतुर्थ भूमि है तत्व का साक्षात्कार, क्योंकि श्रवण मनन और निदिध्यासन करने के अनंतर तत्वज्ञान में निष्ठा हो गई, और तत्वज्ञान में निष्ठा होने से त्रिगुणात्मिका अविद्या की निवृत्ति हो गई, तत्व का साक्षात्कार हो गया, वो चतुर्थ भूमि है। और ये चतुर्थ भूमि जो साक्षात्कार नामक जो भूमि है उसमें तो फिर जो है भ्रष्ट होने की कोई आशंका या संभव है नहीं, वो तो मुक्त हो गया। किंतु भ्रष्ट होने की आपत्ति जो है प्रथम तीन भूमिका में संभव है। निदिध्यासन कर रहा है, तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ है, भोग वासना पूर्व जन्म की कोई प्रबल हो गई और भोग में स्पृहा हो गई और अल्पायु के कारण शरीर छूट गया। तो राम ने इसके विषय में प्रश्न किया और वशिष्ठ जी ने यही उत्तर दिया जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया। और उन्होंने भी कहा कि फिर वो अगले जन्म में जो बाकी बची जो साधना है वो उसका अनुष्ठान वो करेगा। कब तक करेगा? जब तक निर्विशेष मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब तक करेगा। इति ओम।